Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare,
Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Radha Madhava Tuja Bihari Jaya Radha Madhava Tuja Bihari Jaya Gopiya Navarvada Girivara Bhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivar Bhari Jaya Yashoda Nandana Bhagajane Ranjana Jaya Yashoda Nandana Bhagajane Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Tuja Bihari Jaya Radha Giridhari Giridhari Radhe Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranidai 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 Jaya Gauranidai Jai 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 Jai
Savior of the whole world, the most merciful, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupada Paramahansa Prakacharya Shtashtokar Satish Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Tridandi Goswami Maharaj Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Anant Koti Vaishnava Bhakta Vrinda Ki Prem Se Kaho Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrindaki Shri Shri Radha Giridhari Gop Gopinath Shyama Kunda Radha Kundgiri Govardhan Ki Shri Shri Radha Giridhari Ji Jagannath Baldev Subhadra Manya Ki Shri Shri Gaur Nitai Ki Granthraj Srimad Bhagatam Mahapuran Ki All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaurari Premanande. Om Namo Bhagavate. शीर्षक पूतना वध श्लोक श्रृंखला 9 तां तीक्ष्ण चित्तां अतीवामचेष्टितां विक्षया अंतरा कोश परिचाद सीवत वरास्त्रियं तत्प्रभाया च दर्शिते निरीक्षयामाने जननी हि अतिसहतां तां शिक्षणाच्युताम् अतिवाम चेष्टिता ताम तितिक्षणाच्युताम् अतिवाम चेष्टिताम् विक्षयांतरा कोश परिचाद शिवत विक्षयांतर कोश परिचाद शिवत वरस्त्रियं तत्प्रभाया च दर्शिते वरस्त्रियं तत्प्रभाया च दर्शिते निरीक्ष्यमाने जननी हि अतिस्थहतम् निरीक्षयमाने जननी अतिसताम् ताम तितिक्षणाच्युताम् अतिवाम चेष्टिताम् विक्षयांतर कोश परिचाद शिव वर स्त्रियां तत्प्रभाया च दर्शिते निरीक्षयामानि जननी हि अतिस्थताम् ताम तितिक्षणाच्युताम् अतिवाम चेष्टिताम् विक्षयांतरा कोश परिचाद शिवत वरस्त्रियां तत्प्रभाया च दर्शिते निरीक्ष्यामाने जननी हि अतिस्थताम्
ताम्
माताजी वैष्णवी प्रकार है ताम उस पुतना राक्षसी को तीक्ष्ण चित्ताम बच्चों का वध करने के लिए अत्यंत कठोर हृदय वाली अतिवाम चेष्टिताम यद्यपि वह बच्चे के साथ माता से भी अधिक अच्छा बर्ताव करने का प्रयास कर रही थी वेक्षय अंतरा कमरे के भीतर उसे देखकर कोश परिचद असीव मुलायम मयान के भीतर तेज तलवार की तरह वर स्त्रियां सुंदर स्त्री के तत्प्रभाया उसके प्रभाव से छ भी दर्शिते अभिभूत विबल है निरीक्षयामाने देख रही थी जननी दोनों माताएं ही निश्चय ही अतिष्ठताम वे मौन रह गई। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमय माता लग रही थी। वह मुलायम दाल के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी उसे कमरे के भीतर देखा किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं अपितु वे मौन रह गए क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। तात्पर्य, यद्यपि पुतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को अपने गोदी में ले लिया तो बालक की माताएं उसके सौंदर्य पर अत्यंत मुग्ध हो गए। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गोमिथाई की। मुग्ध हो गई कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर माया मोहितम यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर है क्या। जो लोग बहिरंगा शक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध हो जाते हैं वे माया मोहित कहलाते हैं। मोहितम ना भी जानन्ति माम अभ्यः परम अव्ययम्। श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 7 श्लोक श्रृंखला 13। नाते विदु स्व अर्थगतिम हि विष्णु दुरासयाये बहिरअर्तामानिना। श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक 31। यहां पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माताएं बाह्य शक्ति से मुग्ध अर्थात माया मोहित न थी, अपितु भगवान की लीला के विकास हेतु योग माया द्वारा वे मुग्ध कर लिए गई। योग माया का कार्य ही ऐसा माया मोह। श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन मिलितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोआविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम् श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम् सागर जातम् सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपी राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुद्विषये नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आए भक्तों का स्वागत। सर्वप्रथम उपस्थित स्वयं भगवान श्री श्री राधा गिरिजारी जी, जिनके परम अनुकंपा से आज उनके छत्र छाया में आश्रय एवं उनके चरण कमलों में सेवा प्राप्त हम सबको हो रही है। ऐसे दया के सागर कृपा के सागर भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौर नीताय, इनके चरणों में इनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिनके ही कृपा से जिनके अहेतु की कृपा से आज उस परम सौभाग्य भक्ति की प्राप्ति हमें हो रही है। इनके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महा अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र की ओर हम अग्रसर होते हैं। परम मंगल श्रीमद् भागवतम महापुराण, यह परमहंस संहिता है। अर्थात यह परमहंसों द्वारा आस्वाद्य किया जाता है और हमारा परम सौभाग्य है महान भागवत वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी के अहेतु की कृपा से ये परमहंस संहिता का सेवा अवसर प्राप्त हो रहा है। इस श्रीमद् भागवतम का सेवा करते करते हम सब भी परमहंस के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। परमहंस समिता परमहंस द्वारा आस्वाद्य किया जाता है और इसका सेवा करने से हम भी परमहंस हो। परमहंस समिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवतम। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव जी गोस्वामी महाराज उन आनंद कंड भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण उन परीक्षित महाराज को वृंदावन चंद्र भगवान के चरण कमलों में ध्यान करते हुए उनके कथा चरित्र एवं लीला श्रवण करा रहे हैं। कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किए कि भगवान ने अपने आंख बंद कर लिए। भगवान छोटे से हैं, भगवान ने अपने आंख बंद कर लिए। यह भगवान का दिव्य लीला है, उनका दिव्य कर्म है। श्रीमद् भागवतम के इस दशम स्कंद के पंचम अध्याय से ब्रज लीला प्रारंभ होती है। इससे पहले मथुरा लीला। इस पंचम अध्याय से भगवान का ब्रज लीला प्रारंभ होती है। भगवान का दिव्य जन्म पंचम अध्याय में सुंदर वर्णन आता है। नंद महाराज का मथुरा गमन, नंद महाराज का वसुदेव से भेंट और ये छठे अध्याय में से भगवान का दिव्य कर्म प्रारंभ होगा। एक बार भागवत कक्ष में सत्र के अंतर्गत प्रभुपाद जी ने प्रश्न किए, बताइए श्रीमद् भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? आप लोग ने सुना है तो सारे शिष्य बोले सर्वधर्मान परित्याज्य। मन मनाबा मत भक्तो, प्रभुपाद जी ने मंडी लाया, सततम कीर्तयन्तम् माम। सब लोग सोचने लगे और कौन सा है? सर्वधर्मान परित्याज्य सर्वश्रेष्ठ उपदेश भगवद गीता का है। तो प्रभुपाद जी मुंडी हिलाते गए, फिर उनमें से एक भक्त ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। भगवान का दिव्य जन्म और भगवान का दिव्य कर्म जो तत्व से जान लेते हैं तो वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ना एति, वापस इस जगत में नहीं आते। माम एति, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। सो अर्जुना, तो भगवान का दिव्य जन्म हमने श्रवण किए तो चलिए भगवान का दिव्य कर्म को हम श्रवण करते हैं। तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। प्रभुपाद जी ने कहा यही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है सारे भगवद गीता में कि भगवान का दिव्य जन्म को हम जाने, भगवान का दिव्य कर्म को जाने पर कैसे तत्व से जाने। तत्व से जानना चाहिए कि ये जो बालक है वो बालक है, ये उनका प्रकट लीला है, पर ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। ये बालक नंद महाराज का वसुदेव का पुत्र है पर वे हम सबके बाप या पिता भी है। ये तत्व है और ये लीला है। तो भगवान ने आंख बंद कर लिया, कृष्ण ने आंख क्या बंद कर लिया, अनेक अनेक आचार्य अनेक अनेक भक्त ने इस पे टीका लिख लिया, कृष्ण ने क्यों आंख बंद कर ली? कृष्ण ने आंख बंद कर लिया तो एक भक्त ने लिखा, अनेक अनेक भक्तों का अनेक अनेक टीका है, तब कुछ ऐसे आचार्य भक्तों का टीका का आनंद लेते हैं, आस्वादन करते हैं। तो एक भक्त लिखते हैं, जैसे छोटे बच्चे कुछ भयावर वस्तु को देखते हैं तो डर जाते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, तो मानो कृष्ण भी छोटे बच्चे का लीला कर रहे हैं, तो उस लीला के अंतर्गत आंख बंद कर लिए, पूतना भयावर है। तो भगवान कृष्ण जो है बच्चा है वो आंख बंद भी कर लिया तो सब कुछ देख सकते हैं, हमारे जैसे नहीं, हमने आंख बंद कर लिया तो कुछ देख नहीं सकते, ऐसा नहीं। आंख बंद करते हुए कृष्ण ने देखा कि पूतना आ रही है, कि पूतना सुंदर रूप धारण कर रही है, कि पूतना के सुंदर रूप को वो देखा नहीं, भगवान कृष्ण ने उसके भयावर खतरनाक भाव को देख लिया। भगवान बंद आंखों से क्या क्या देख लिया, सब कुछ देख लिया, हम सब के मन में क्या चल रहा है वो भी देख लिया। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे, गाड़ी में हम जाते हैं, बस में जाते हैं, 40 पैसेंजर है, हम अपने मन में क्या चल रही है वो जानेंगे, पर परमात्मा रूप में भगवान 40 के 40 पैसेंजर के मन में क्या चल रही है वो जान लेते हैं। तो गिरिधारी यहां बैठे बैठे हम सब के मन में क्या चल रही है जान लिया या जान गए। तो भगवान आंख बंद करके सब कुछ जान लिया, और हम आंख बंद कर लेते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को गाना पड़ता है, जीव जागो जीव जागो गोरा चांदे मोले, बोलते हैं कि जागो भाई जागो जीव जागो, गोरा चांद बोल रहे हैं जीव जागो। भगवान को सोते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु चिल्ला रहे चीख रहे, को तो निद्रा जावो रे माया पिशाची रखोले, कब तक माया के गोद में सोए पड़े रहेंगे, उठो उठो जीव जागो। इतना ही नहीं, कृष्ण यशोदा मैया गोपियां कंप्लेन करने आए कि आपके लाला ने ऐसा कर दिया, तो बोला क्या कर दिया, तो चिल्ला क्यों रही है, अरे आपके लाला ने क्या नहीं कर दिया, हमारे सोते बच्चे को चिमटी मार दिया। तो मां यशोदा ने कहा, देखो गोपी ये अच्छी बात नहीं है, आप अपने बच्चे को जगाते नहीं हो, उठ जाती हो और प्रातः काल के कार्य कर लेते हो, दही मंथन इत्यादि करते हो। तो गोपी ने कहा, अगर वो जग जाएगा तो रोएगा चिल्लाएगा, तो कहा देखो ये बहुत गलत बात है, बच्चे को सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो मेरे आपने उसे उठाया नहीं तो मेरे बेटे ने मेरे लाला ने उसे जगा दिया, तो इसमें बुरा क्या है, ये तो अच्छी आदत आपके बेटे में डाल रहे, तो चिमटी मारते हैं। पर बच्चे जो हैं कृष्ण के चिमटी से रोते नहीं है, कृष्ण उनके कान में जाते कहते हैं, अब तू बहुत छोटा है, अब तू बहुत छोटा है, अनफॉर्चुनेट बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अब मैं थोड़ी देर में माखन चोरी का लीला करूंगा, इसमें आपका नो एंट्री। तो बच्चा रोता है, नो मुझे भी आपके लीला में आना है, तो बच्चा रोता है। तो सोते बच्चे भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं, तो चिमटी मारते हैं, जगाते हैं, आंख खोलो, क्योंकि हम अगर आंख बंद कर लेंगे कुछ भी हम जान नहीं पाएंगे, पर भगवान आंख बंद करते करते सब कुछ जान लिया कि पूतना सुंदर तो बाहर से है, अंदर बहुत खराब। फिर एक भक्त कहते नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पूतना स्तन में जहर भर के लेके आ रही है, मानो कि कड़वा दवाई दे रही है, तो बच्चे का लीला करना है। बच्चों को कड़वा दवाई अगर देंगे तो बच्चे आंख बंद कर देते हैं। तो ये बात है कि कड़वा दवाई कृष्ण को पिलाया जा रहा है, तो कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। ये देखो ये भागवतम कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। अगर कोई चित्र बनाने जाए या चित्रपट बनाने जाए या कोई लौकिक कथा भी लिखने जाए, तो ऐसा भयावर घातक विचार किसी के अंदर नहीं आया होगा। हमारे भूतकाल के प्रधानमंत्री, वे दक्षिण भारत क्या गए थे, तो कुछ आतंकवादियों ने उन्हें पुष्पहार का भेंट कर लिया और पुष्पहार से ऐसा धमाका हुआ कि आज भी कोई राजनीतिक नेता कोई पुष्पहार को स्वीकार नहीं करते। तो इस आतंकवाद की बुद्धि को देखकर सब लोग कहते क्या आइडिया लगा दिया, हमने सोचा भी नहीं। पर भागवत में यह लीला जो है, जो 5000 वर्ष पहले घटी, कोई सोचा होगा, कोई आतंकवाद सोचा होगा स्तन में जहर पिला लेकर बच्चों को मारे। तो अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, अगर ऐसा बोलेंगे स्तन में जहर पिलाकर दुश्मन को मारने जा रहे हैं, तो डायरेक्टर एक्टर ये आइडिया अगर ले लेंगे तो बोलेंगे सुपर हिट पिक्चर हो जाएगा। ये सब इस प्रकार से है। प्रभुपाद जी लिखते हैं मोह माया, सुंदर स्त्री कभी कभी घातक हो सकती है। पुराने जमाने में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राजाएं नाग कन्याओं को पालते थे। ये नाग कन्या कैसे होते हैं, जन्म से उस कन्या को जन्म से जहर पिलाया जाता है, जहर उनका सर्प का जहर उनका आहार बन जाता है, और जब बड़ी हो जाती है तो इतने सुंदर लगती है, इतने सुंदर लगती है, तो दुश्मन को मारने के लिए उस कन्या को बेचती है, विष कन्या बोलते हैं उनको। तो ये विष कन्या सुंदर स्त्री बन जाती है और दुश्मन के पास राजा बेच देते हैं, और वो दुश्मन उसके वशीभूत होकर उस तोहफा को स्वीकार कर लेते हैं और वो अपने नाखून से ऐसा पकड़ लेती है कि वो आदमी खत्म हो जाता है, यह विष कन्या। पर वो आइडिया कहां से मिला, जन्मादि ऐसे यथा श्रीमद् भागवत सोलंगा। तो ये पूतना जहर लेकर आ गई और जहर मानो कि कड़वा है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। तो एक आचार्य कहते नहीं नहीं नहीं, कृष्ण ने आंख इसलिए बंद कर लिया क्योंकि कृष्ण अब सोचने लगे, मैंने तो भगवत गीता में स्पष्ट बता लिया कि अंतगतम पापम, पूरा पाप नाश होने के बाद जब पुण्य संचित हो जाता है तब मेरा दर्शन होता है। तो ये क्या पुण्य किया, आंख बंद करके सोच रहे क्या पुण्य किया होगा। तो ये आंख बंद करने का भाव है। एक आचार्य कहते नहीं नहीं नहीं, भाव ये है कि भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशायश्च दुष्कृताम्। दुष्कृतों को विनाश करना है, पर ये दुष्कृत स्त्री निकली, और मैंने ही कहा कि स्त्री वृद्ध बालक और गाय की रक्षा होना चाहिए। अब देखो विरोधाभास हो रहा है, स्त्री ही दुष्कृत हो रही है। चलो मैं इनके रूप को नहीं देखूंगा, आखिर में ये दुष्कृत है, तो आंख बंद कर लिया। तो एक आचार्य कहते नहीं नहीं नहीं, भाव यह है कि भगवान ने आंख बंद कर लिया, क्योंकि पाप जो है इंद्रियों से घुसता है। और भगवान सारे जगत को एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए बताते हैं, ऐसे पाप का दर्शन कभी मत करो। गांधी जी के तीन बंदर है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तो वो आचार्य लिखते हैं कि पाप के 14 स्थान है। कितने स्थान है, कितने? और आज का दिन भी चतुर्दशी है ना, अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ है, नवमी को नंद उत्सव हुआ है, और दसवीं को नंद महाराज जी तुरंत कर देने के लिए चले गए। एकादशी के दिन, अनंत एकादशी बोलते हैं उसको, अनंत एकादशी के दिन शिव जी से रहा नहीं गया और बाबा जी बनकर आ गए बच्चे का दर्शन करने लिए। ये एकादशी का लीला है। माँ यशोदा ने बोला नहीं नहीं, ऐसे भयंकर साधु को देखेगा मेरा लाला रोएगा। ये एकादशी का लीला है। और द्वादश को नहीं, ये एकादशी, द्वादश को नंद महाराज कर इत्यादि दे देते हैं। त्रयोदशी के दिन वसुदेव जी से भेंट हो जाता है, और ये चतुर्दश। आज 14वां दिन है, यानी कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी है। और 14 स्थान है पाप के, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसमें पाप का वास है। तो भगवान बताते हैं पाप को स्थान मत देना, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, पाप को नो एंट्री, पाप को कोई स्थान नहीं। तो भगवान आंख बंद कर लिए और पूतना यहां पहुंच गई। कोश परिचाद असी बतर, इतने सुंदर लग रही थी बाहर से, पर अंदर बहुत ही जहरीला विचार उनके थे। मानो कि एक मुलायम कोश के अंदर एक तेज तलवार, तेज तलवार। भगवान, वो इतनी प्यारी लग रही थी, पूतना इतनी प्यारी लग रही थी कि इसका सुंदर वर्णन आता है कि सब लोग देखते रह गए, सारे ब्रजवासी देखते रहे। जैसे जैसे पूतना चलते चलते आ रही है, सब देखने लगे, अरे इतने सुंदर लाल साड़ी में इतने सुंदर लग रही है, इनके फूल देखो। देखते रह गए, अक्खी बक्के रह गए, सबका मुंह खुला गया, कोई रोका नहीं, कोई ठोका नहीं। तो पूछने लगी, बोलो बोलो नंद महाराज जी का घर कहाँ है, उनका घर कहाँ है? तो गोपियां पूछने लगी, लगती हो कि आप उनके मामी हो। तो बोला हाँ, घर बताओ कहाँ पे। हाँ हाँ, मामी है तो जरूर आप खिलौना लाई होगी। हाँ हाँ लाई हूँ, बहुत सारे खिलौने लाई होगी। हाँ हाँ, क्या क्या खिलौने लाई? अरे मैं सब कुछ बताऊंगी, पहला घर बताओ। ये स्त्रियों का आदत होती है, प्रश्न अगर पूछे तो जवाब तुरंत नहीं देंगे, 1000 प्रश्न पूछेंगे, इधर उधर सब एड्रेस वेड्रेस सब ले लेते हैं, फिर बाद में बोले हाँ इधर ही तो है, ये सीधा चले जाओ। तो चली गई पूतना। रोहिणी माता यहां पे लिख रहे हैं, रोहिणी माता और यशोदा मैया देखते रहे कौन आ गई, बोलते कि कृष्ण इतने सुंदर है मानो कि साक्षात विष्णु है। सोच रही थी इतने सुंदर विष्णु को देखने के लिए लक्ष्मी आई होगी, अंबिका आई होगी, या इंद्र के पत्नी, उनका नाम क्या है, सची आई होगी, ऐसे लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। ओ साक्षात अगर इतने सुंदर है तो ये विष्णु, और ये इतने सुंदरी है तो ये लक्ष्मी, शायद लक्ष्मी ही विष्णु से मिलने आई होगी। माँ यशोदा ने बोली आप कौन हो गोपी, बोली मैं तो गोपी हूं ब्रज में रहती हूं। अरे अगर आप ब्रज में रहती हो तो नंद उत्सव के दिन क्या आपने दर्शन नहीं किया? नहीं किया। कहां थी? मैं मायके गई थी, तो मायके से मैं आज आई तो खबर मिला तो मैं अपने घर नहीं गई, मैं सीधा आपके घर आई। तो बोला ठीक है आओ। तो इतना सुंदर लग रही थी, आगे सवाल नहीं किया। देखो अगर हम बहुत अच्छी तरह से सज धज कर जाएंगे, सिक्योरिटी वेक्योरिटी कोई रोकेगा नहीं। राधा कृष्ण प्रभु बोल रहे थे ना, पर फटा धोती और कुर्ता एकदम मैला हो तो बोल गया सीटी बजाकर बात भी नहीं करेंगे, फुर फुर इशारे से भेज देंगे। यह है कलयुग का लक्षण। अच्छे सूट बूट में गन लेकर जाए, पिस्तौल लेकर जाए, कोई रोकेगा वो ठोकेगा नहीं। पर धोती कुर्ता अगर फटा हो और अच्छे भावना से जाए तो रोक लेंगे। तो यह कलयुग का लक्षण है, हाथी सुई के छेद से निकल जाता है, पूंछ अटक जाता है। तो इस प्रकार से इतने सजदच के गई कि कोई रोकने वाला नहीं था। बोला तो ये इतने सुंदर है तो इसका मन भी सुंदर रहेगा। प्रभुपाद जी कहते सुंदर स्त्री कभी कभी भयावर रहेगा, उनके रूप में मत जाओ, ऐसे कहते हैं, रूप में मत जाओ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो धीरे धीरे यशोदा मैया ने रोका नहीं, चलो गोपी जाइए लाला का दर्शन कीजिए। और मन ही मन सोच रहे आजकल कौन कौन आने लग गया। वही एकादशी के दिन दो दिन पहले एक बाबा जी आ गए, बोला कृष्ण का दर्शन करना, आज देखो कौन आ गई, लगता है लक्ष्मी के साक्षात वही आ गई। और जैसे ही वो अंदर आ गई भगवान ने आंख बंद कर लिया और इसके ऊपर इतने सारे आचार्यों ने टीका लिख लिया, सब अपने अपने भाव लिखते कि कृष्ण ने आंख बंद कर लिया, कृष्ण आंख बंद कर लिए और धीरे से पुतना जो है कृष्ण को अपने गोद में ले रही है और सोची कि इसे घर के अंदर नहीं कुछ करूंगी। तो धीरे धीरे घर के बाहर जाती है और बैठ जाती है और पुतना आगे क्या करेगी आप सब जानते हैं। तो कल के श्लोक में आएगा पूतना क्या करती है, तो कृष्ण क्या करेंगे आप सब जानते हैं, वो परसों के श्लोक में आएगा, आप सब आते रहिए। तो कृष्ण भले छोटे से ही हैं पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण कृष्ण है, भगवान है, और भगवान एक उपाधि है और उस उपाधि में कोई नहीं स्वीकार कर सकता उस उपाधि को, कृष्ण को छोड़कर। कृष्ण के अंदर सारे सौंदर्य, सारे बल, सारा ज्ञान है और वो उपाधि केवल कृष्ण के लिए रिजर्व है, उस उपाधि को कोई नहीं ले सकता, कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण छोटे से हैं, भगवान थे है और रहेंगे। यहां एक पुतना जब आती है कृष्ण को मारने की इच्छा से, आगे जाके हम देखेंगे वो पुतना ही मर जाती है। इस प्रकार से भगवान से जो भगवान को मारने का इच्छा से आता है या उनके भक्तों को मारने का इच्छा से आता है वो खुद मर जाता है। चैतन्य महाप्रभु की एक लीला दक्षिण भारत में ऐसे घटी कि वो नाचते गाते जा रहे थे, एक रात रुक गए, तो केरला की बात है, भटहरी नाम के कुछ सन्यासी लोग थे, उनके नौकर को पकड़ लिया और उस नौकर को बहला दिया और लड़कियों के साथ ये कर दिया। बोला चलो हमारे सन्यासियों के दल में देखो कितने खाने पीने और लड़कियों का मौज है, ये सन्यासी अच्छे हैं। तो वो फंस गया उधर। तो सुबह सुबह जब चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि अपने भक्त फंस गया, तो चैतन्य महाप्रभु भागे और उस कृष्णदास, काला कृष्णदास को पकड़ कर लेकर आए। जैसे खींच के लेके आ रहे थे, ये बर्तारी जितने भी सन्यासी लोग थे कथाकथित, वे तलवार लेकर आए, बाला लेकर आए और अलग अलग हथियार लेकर आए और चैतन्य महाप्रभु को मारने का प्रयास किया। तो वहां पे वर्णन आता है, इन सब के हाथों से जितने भी हथियार थे वो आकाश में उड़ने लगे और आकाश में उड़ते उड़ते वापस जाकर वो सारे सन्यासी के सर पर आए और एक एक तलवार से उन सब का सर धड़ से अलग हो गया। यहां पे बात यह है, अगर कोई भगवान को मारने जाता है स्वयं मर जाता है, या भगवान के भक्त प्रहलाद को जो मारने गए वो सब मर गए, या अम्बरीश महाराज को मारने गए वो सब मर गए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो लीला पुतना वध का है, सारे भक्तों को बड़े ध्यान से श्रवण और इसका कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नवसिक्या भक्तों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि नवसिक्या भक्तों के अंदर गुरु या भोगस गुरु या मिथ्या गुरु से आकर्षित होने का एक कमजोरी रहता है। उस कमजोरी के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए पूतनाबद्ध की कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। नवसिक्के भक्तों के लिए यह कथा बड़ा लाभदायक है। बाकी भक्त जो ऊंचे श्रेणी के हैं वो तो इसमें आनंद लेंगे, पर नवसिक्के भक्त इसे अगर स्मरण करेंगे, जो अन्य कथाकथित गुरु के प्रति आकर्षित होने का जो प्रवृत्ति है उससे हम बच सकते हैं। गुरु का अर्थ होता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को पोषण देता है। जिस प्रकार से पूतना आई थी मां का रूप धारण करके, धात्री का रूप धारण करके, तो मां दूध पिलाती है तो बच्चे को पोषण होता है, शक्ति प्राप्त होती है। पर यहां पे ये मां का रूप लेकर आ रही है पर नकली मां का, क्योंकि दूध के जगह में जहर लेकर आ रही है। तो इसी प्रकार से जन साधारण जो है, कभी कभी उनके अंदर वो प्रवृत्ति रहता है, कोई भी आ जाए तो उसके पास चले जाते हैं। उनके पास जब जाते हैं, अगर वो कथाकथित गुरु रह गए तो उसके अंदर जो गंदे वासना है, भाव है, उनके तो गंदे विचार है, उनके बातों को सुनकर, उनकी आज्ञा का पालन करके वो गंदे विचार हमारे अंदर आ जाएंगे और हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है पूरी तरह से नाश हो जाएगी। वैसे गुरु के पास जाएंगे, वैसे अगर हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु ऐसे आदेश देंगे कि प्रातः जल्दी उठिए, 16 माला का जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए। इससे क्या होगा, हम देखेंगे धीरे धीरे हमारे अंदर जो विष है भोग करने का प्रवृत्ति है वो कम हो जाता है, सेवा का भाव जागृत होता है और कीर्तन में मन लगता है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। पर नकली गुरु के पास जाएंगे तो क्या होगा, हमारे वासना कम नहीं होंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे और हमारा आध्यात्मिक जीवन तो दूर रह जाएगा। तो वो प्रवृत्ति है, इसे अनर्थ कहते हैं। और वृंदावन में कृष्ण ने बहुत सारे असुरों का वध किया है, भागवत में उसका वर्णन आता है। और प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इन सब असुरों का वध की कथा नवसिक्या भक्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और इसका स्मरण करना चाहिए। एक एक असुर का वध की कथा एक एक अनर्थ को नाश करेगा। जैसे बलराम जी के दो कथा आती है तो उससे काम वासना के अनर्थ हमारा वध हो जाएगा। ये पूतना वध की जो कथा अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर इधर उधर कोई भी झूठे बाबा जी या कथा कथित गुरु जी के पास जाने का जो प्रवृत्ति है वो नाश हो जाएगा पूतना वध की कथा श्रवण करने से। ये लीला जो है सच में बहुत ही रोचक है, क्योंकि इसमें भगवान का एक गुण, सबसे उत्तम गुण, महत्वपूर्ण गुण प्रकट हो जाता है। यहाँ पे पूतना जो है एक बहुत ही नीच निकृष्ट कार्य करने आ रही है, पर भगवान कृष्ण जो है उनके इस कार्य को न देखते हुए ये आंख बंद करने का दूसरा है, उनके भाव को स्वीकार कर लेते हैं पर इनाम ऊंचे कोटि का दे देते हैं। भगवान का यह गुण है जीव कितने भी घटिया से घटिया, कितने भी निकृष्ट कार्य क्यों ना करे, भगवान उसे कभी देखेंगे नहीं। भगवान का स्वभाव है ही नहीं, भगवान कभी नहीं देखते। इतना जन्म हो गया, एक एक जन्म ने उन्होंने इतना ऐसे ऐसे काम किया। एक जन्म तो उसने बहुत सारे लोगों को खून से मार दिया, यानी कि खून कर दिया। दूसरे जन्म में व्यभिचार किया, आज भक्त बन के आ रहा है, तिलक लगा के आ रहा है, मैं इसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हमने करोड़ों जन्म लिए, अनेक अनेक जन्म लिए हैं, पर भगवान देखते हैं मेरे मंदिर में आया, मुझे 5 पैसा दान दिया, प्रणाम भी नहीं किया, उस 5 पैसे को याद रखेगा, जीवन भर याद रखेंगे। भगवान कभी नहीं भूलेंगे कि इन्होंने 5 पैसा डाला मेरे इस हुंडी में, दान पेटी में। उस बात को याद करके भगवान उसको बड़े बड़े खतरे से बचा देंगे। भगवान लिखते हैं भगवद गीता में, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पम अपि, थोड़ा सा सेवा भगवान जीवन भर नहीं भूलेंगे, वो ऋणी रह जाएंगे। ये जीव ने मेरा सेवा किया है, सेवा किया है, सेवा किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कृष्ण का भाव है, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इन्होंने 5 पैसा डाला, मेरे एक मंदिर में आया, एक दिन प्रणाम किया मुझे। भगवान कभी नहीं भूलेंगे, जीवन भर याद रखेंगे। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। तो कौन मारते हैं, कौन सजा दे रहे हैं, ये भगवान का प्रकृति है। भगवान का प्रकृति जो है वो हमें कर्म बंधन में डाल के हमें भगवान से दूर रखते हैं, पर भगवान के पास अगर हम आएंगे तो भगवान हमारे केवल सेवा देखेंगे। भगवान हमारे अवगुणों को, हमारे कुकर्मों को, निकृष्ट कर्मों को अनदेखा कर देते हैं। ये आंख बंद करने का एक कारण है। भगवान हमारे द्वारा किए गए सारे सेवाओं को सदैव स्मरण करेंगे। यह है भगवान और भक्तों का गुण। प्रभुपाद जी एक बार भक्तों को लेकर गाड़ी में चल रहे थे, इंग्लैंड की बात है, तो उनके पीछे उनके शिष्य थे, कीर्तन कर रहे थे, फिर कीर्तन हो गया तो गाड़ी से देखे कि कुछ लोग, कुछ युवक नशा करके रोड पे सो गए थे, तो भक्तों में बातचीत होने लगी और उस बात को सुनकर प्रभुपाद जी रोने लगे। भक्त कहने लगे, देखो कितने गंदे लोग हैं, ये लोग शराब पी के सुबह सुबह ऐसे नाले में पड़े हैं। तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गया और प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सबको चाहिए कि इन सब का आप दोष ना देखें, अगर दोष अगर मैं भी देखता तो कुछ महीने पहले आप लोग भी इसी प्रकार से शराब इत्यादि पी रहे थे, और मैं कहता इतने गंदे लोग को मैं क्यों शिष्य बनाऊं, गुरु न शिष्य, है ना, गुरु बनने का अधिकार नहीं अगर शिष्य बात नहीं सुनेंगे तो, पर मैंने शिष्य बनाया। करुणा, मैं आपका दोष नहीं देखा, मैंने देखा एक जीव है वो भगवान से अलग रह के तड़प रहा है, मैं भगवान से मिलाऊंगा, तो ये भक्तों का भी गुण होता है, तो वो दोष नहीं देखते हैं। और इस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्त दोष नहीं देखते हैं। तो मारते कौन है, विष्णु मारते कौन है, भगवान के शक्ति ये सब मारते हैं। तो पुतना आई थी और भगवान इस प्रथम लीला में इसी को सबसे महत्वपूर्ण लीला बता दिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाते हैं। आप आओ मेरे पास, भले आप कितने भी गंदे हो, कितने भी निकृष्ट हो, आप आओ मेरे पास, मैं आपके सारे गंदगी को देखूंगा नहीं, आपका सेवा को मैं स्वीकार करूंगा, आपको मेरा भक्त बनाऊंगा और परम धाम आपको मैं प्रकट दे दूंगा। तो इस लीला को सुनकर उद्धव जी और सुखदेव गोस्वामी महाराज जी भाव विभोर हो जाते हैं, बोलते कौन इतना दयालु हो सकता है, कौन इतने दयालु हो सकता है। जो व्यक्ति जहर से मारने को आता है, भगवान ने उसको एक घर दिया, मीरा रोड में नहीं, बांद्रा में नहीं, कफ परेड में नहीं, दिल्ली में नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, अरे गोलोक वृंदावन, वैकुंठ में भी नहीं, गोलोक वृंदावन, इतना ऊंचा स्थान, उधर फ्लैट दे दिया। एक आदमी जो एक व्यक्ति अगर मारने आता है तो उसको ये इनाम, तो विचार कीजिए, तो विचार कीजिए। एक उदाहरण ऐसा देखकर इस बात को सरल बनाने का प्रयास करूंगा, एक दृष्टांत है इस प्रकार से। अगर किसी ने आपको झापड़ मारा जोर से, आप वैष्णव है, तो तुरंत आप जेब से 1,00,000 रुपया देते हो, तो बाजू में जो देखता होगा वो सोचेगा अगर झापड़ मारने को ये वैष्णव ने 1,00,000 रुपया दिया तो उसका पाँव का मालिश करूंगा तो कम से कम 10,00,000 तो कम से कम दे देंगे, 1,00,00,000 तो निकल ही जाएगा पर कम से कम 10,00,000 मिलेगा, और प्रेम से सेवा किया तो करोड़ों में मुझे देगा। तो ये भाव है, अगर कृष्ण को मारने वाले को वैकुंठ में नहीं गोलोक वृंदावन में स्थान मिल रहा है, तो कृष्ण का हमने इतना प्रेम से सेवा किया तो हमको गोलोक वृंदावन में कितना बड़ा बंगला मिलेगा और उस बंगला में कितना सुविधा मिलेगा। तो सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए और भाव विभोर हो जाइए। पूतना ये सोच रही थी मैं कृष्ण को मार दूंगा और कंस का इच्छा पूरा करूंगा, पर पूतना कर नहीं पाई। पूतना कोई आदेश था कंस के द्वारा प्रेरित थी, जितने भी बच्चे हैं उसे मारो और जितने भी लड़कियां हैं उसे मेरे पास लाओ, मैं सारे लड़कियों से शादी करूंगा और सारे बच्चे को आप मार देना। बात ये थी, देवी जब योग माया जो है जब कंस के पास आई तो महामाया बनकर उसके हाथ में आई, हवे में उड़ गई, दो बात कहे, एक बात भागवत में प्रकट होता है, दूसरी बात अन्य पुराण में प्रकट हो जाता है। कहते हैं कि जितने आपको जो मारने वाला है कहीं कहीं प्रकट हुआ है, तो कंस डर जाता है। फिर दूसरी बात बोलती है, इसी के साथ साथ 8 प्रकार की शक्ति जन्म लिए हैं कुछ महीने पहले, और ये 8 शक्ति में से एक शक्ति जो है वो सर्वोपरि है, और उनका जो पति बनेगा वो राजेंद्र बनेगा, अर्थात सारे जगत का राजा बनेगा। तो कंस सोच रहा था चलो सारे बच्चों को मार दूंगा तो इसमें कृष्ण भी आउट हो जाएंगे, और लड़कियों से मैं शादी करूंगा उनमें से कोई ना कोई सर्वोपरि शक्ति होगी तो मैं राजेंद्र बन जाऊंगा। तो इसीलिए पूतना जब ये राधा रानी की कथा के अंतर्गत आपने श्रवण किया होगा, केचरी हवा में उड़ रही थी विंध्याचल में, तो दो लड़की विंध्याचल पर्वत में नाच रही थी छोटे छोटे, एक थी चंद्रावली और एक थी राधा रानी, तो दोनों को उठाया ऐसे, तो जैसे ही उठाए तो सब लोग ने बोला चोर 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 हवे में उड़ रहा है। तो विंध्याचल पर्वत अपने ब्राह्मणों को बुलाए, इसे रोको कुछ करो। तो सारे ब्राह्मण जो थे यज्ञ स्थापन किए और पुतना वध का मंत्र बोलने लगे, असुर राक्षसी मरण स्वाहा स्वाहा। तो जैसे जैसे उस मंत्र का प्रभाव पड़ रहा था, पुतना कमजोर हो रही थी, और पुतना कमजोर होते होते वो जब विदर्भ क्षेत्र में आए महाराष्ट्र में, तो एक हाथ उसका कमजोर हो गया, तो एक बच्चा गिर गया। तो वो चंद्रावली आखिर में रुक्मणी बन जाती है, रुक्मी की बहन, और आगे द्वारका में वो लीला में आएगी। फिर दूसरा जो थी वो द्वारका से होते हुए सीधा वृंदावन तक आई, तब वो मंत्र का ऐसा प्रभाव था, इतने कमजोर हो गई तो गिर गई, तो बरसाने में नहीं रावल गांव में गिर गई। तब वहाँ पे जाके वे कीर्तिदा और विश्वभानु के नंदनी बन गई श्रीमती राधा रानी। कंस का राधा रानी से विवाह करने का जो प्लान था उसे खत्म हो गया, नहीं तो ये दोनों लड़की को मथुरा में कंस के पास लेने का भाव था पुतना का, ताकि इनसे विवाह करके कंस क्या हो जाएगा, राजेंद्र। पर वो प्लान फेल हो गया, और आगे जाके हम देखेंगे कंस का सारा प्लान फेल हो जाएगा। ये सारे लीला जो है इसे ध्यान से हम श्रवण करते जाइए, क्योंकि जन्म कर्म चा, तो भगवान का दिव्य जन्म सुन लिया, भगवान का दिव्य लीला प्रारंभ हो रहा है, इसे तत्व से जानना चाहिए। कृष्ण भले बच्चे हैं पर वो भगवान थे, है और रहेंगे। कृष्ण को व्यायामशाला में नहीं जाना पड़ा कि मैं अभी पुतना को मारूंगा, पाँच दिन के बाद तो मैं थोड़ा सा दंड मारूंगा, फिर थोड़ा सा क्या विटामिन का पिल्स लूंगा, फिर बाद में पुतना को मारूंगा। खेल खेल में क्रीड़ा एवं भगवान थे, है और रहेंगे। भगवान को लीला भोग करने का अधिकार है, हमको सेवा करने का अधिकार है। कर्म ने एवं अधिकारस्थे, भगवान को भोगानी एवं अधिकारस्थे, इसको लीला भोग करने का अधिकार है, हमको कर्म करने का अधिकार है। हम सब सेवा में लगे रहें तो कृष्ण हमको गोलोक, हमने सेवा किया तो गोलोक में तो रिजर्वेशन हो गया। अभी उस ऐसा बंगला, इतना सुंदर बंगला और उसमें क्या क्या सुविधा है, वो हमारे सेवा के ऊपर है। तो सेवा करते रहिए और आनंद प्राप्त करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूतना वध की श्रील प्रभुपाद की जय। एकाध किसका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक प्रश्न है हम पे, ठीक है एक प्रश्न हम लेंगे। बहुत सुंदर बात, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने श्रवण किया। सार यह है कि भगवान दोष नहीं देखते हैं, भक्त दोष नहीं देखते हैं। तो मैंने बताया शुरू में कि भक्तों के बीच में रहते रहते कभी हम दोष को देखते हैं, तो ये प्रवृत्ति से कैसे बचें हम। परमहंस के ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भाव ये जो संस्था है, ये परमहंसों का संस्था है, परमहंस द्वारा स्थापित संस्था है। इसमें जो भी आता है इसके नियम पालन करेगा, चाहे वो ऊंचे कुल से हो या नीचे कुल से हो, कैसे भी क्यों ना हो, अगर भक्तों के संग में इन नियमों को कड़ाई से पालन करेंगे, वो अदम से अदम कौवा भी क्यों ना हो, वो परम से परम हंस बन जाएगा। ये परम हंस का संस्था। तो भक्तों के संग में अगर परमहंस द्वारा दिया गया नियमों को पालन करेंगे, ये प्रवृत्ति निकल जाएगा। ये दोष देखने का जो प्रवृत्ति है बहुत घातक है। नवसिक्या भक्त इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब हम दोष देखते हैं वो दोष हमारे अंदर आ जाता है, वो दोष हमारे अंदर आ जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सुंदर बात कहते हैं, प्रगति का सूत्र यह है आत्मनिंदा, स्वयं में दोष देखें, स्वयं का निंदा करें, आत्मनिंदा पर प्रशंसा, औरों के अंदर अच्छाई देखो। ये सूत्र जीवन में पकड़ के लेके जाओ तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस दिन हम अपना प्रशंसा करेंगे समझ लेना नाश हो गया हम, कि मैं इतने अच्छे कुल से जन्म लिया, मैं इतने अच्छे बोलता हूँ, मेरे सुनने वाले इतने हैं, मेरे कीर्तन में सब मुग्ध हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो ये बहुत घातक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन हम अपना प्रशंसा करेंगे और दूसरों का निंदा करेंगे ये हमारा दुर्गति है। ये बात को जीवन में हमें स्वीकार करना चाहिए अगर हम अच्छे भक्त बनना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। अगर जल्दी से जल्दी नहीं भी बनना चाहते हैं, भक्तों के संग में रहेंगे, ये संस्था ऐसा है कोई कितने भी निकृष्ट क्यों ना हो वो उत्तम बन जाएगा। प्रभुपाद जी की इतना कृपा है, ये परमहंसों का एक, भले आज हम उस स्तर पे नहीं हैं फिर भी अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे और तीव्रता से इनकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करेंगे जरूर कृपा बन होगा और सभी परमहंस बनेंगे। ये प्रभुपाद जी का आंदोलन श्रीमती राधा रानी की कृपा से भरा हुआ है। इस आंदोलन में कितने भी नीच से नीच व्यक्ति क्यों ना आए, कितने भी दूषित से दूषित व्यक्ति क्यों ना आए, ये मृत्यु प्राप्त करने से पहले वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा और देह त्यागने के बाद भगवत धाम को प्राप्त करेगा। अगर वो कितने भी नीच है, ये व्यक्ति कैसा, इसको मैं क्यों भक्त बोलूं, ऐसा बोलना भी खराब है, क्योंकि एक दिन आएगा वो अच्छा भक्त बन जाएगा। इतने साल से वो जप कर रहा है फिर भी वो नीच हरकत कर रहा है, ये हमारा नहीं अधिकार। वे और कोई भक्त होंगे उसको एक ठीक करने वाला, वो एक दिन अच्छे भक्त बन जाएगा, पर अगर हम दोष देख के रहेंगे तो वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा, हम हमारा जीवन घातक पर रहेगा। तो हम कैसे जिए, हम रूपानुग्रह है और रूप गोस्वामी का आदेश है, जो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है उसको मन में कम से कम आदर देना चाहिए। रूपानुग्रह, रूप गोस्वामी ने कहा, कभी नहीं कहा कि हमें किसी का निंदा करना है। आप उपदेश अमृत खोलो देखो 11 उपदेश है, उसमें एक भी उपदेश में नहीं कहते कि किसी का निंदा करो या दोष देखो। कृष्ण इति गिरिताम मनस आदरित, जो कृष्ण के पास भक्त बनने के लिए आए और कृष्ण का उच्चारण किया उसको मन से आदर करना चाहिए, और जो मध्य स्तर में आ गए अच्छा सेवा कर रहा है उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और जो उत्तम कोटि के श्रेणी भक्त हैं उसको मन में और तन से प्रणाम करके उसका सेवा करना चाहिए। यह 7वां उपदेश अमृत का उपदेश रूपानुग्रह हमें। दोष देखना हमारा काम नहीं है, हाँ भक्तों में कमी है उसे ठीक करने का कुछ अधिकार भक्त होते हैं वो करें ठीक। अगर किसी में कमी दिखाई पड़ती है तो उसे हमसे श्रेष्ठ भक्तों को बताएं, पर मन से सबको आदर करना चाहिए। ये कैसे भक्त हो सकता है, ये ऐसे ऐसे बोला ऐसे ऐसे किया ना, ये हमारा, हम रूपानुग्रह नहीं है। फिर अधिकार भक्त को बता दो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं, ऐसा मुझे लगता है, बस आपने अपना कर्तव्य का पालन कर लिया, बाकी कृष्ण और उनके अधिकारी जान लेंगे। पर निश्चित रूप में प्रभुपाद जी के आंदोलन में जो आया वो जरूर भक्त बन के जाएगा, शुद्ध भक्त बन के जाएगा। अगर सोच लो कि वो ठीक नहीं हो रहा तो उसे ऐसे परिस्थिति में भगवान डालेंगे कि उसे ध्यान पूर्वक जप करना ही पड़ेगा, या तो ऐसा बीमारी आ जाएगा कि उस बीमारी से पीड़ित होकर वो रो रो के जप करेगा और कृष्ण का कृपा के लिए याचन करेगा और इसके द्वारा कृष्ण उसके सारे पाप नाश कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कृष्ण की काम है, पर शुद्ध बनेगा ही बनेगा, दिस इज गारंटेड। जैसे श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में कहते हैं शुष शुष रूभीस, यानी कि आप सेवा मत करो भागवत का, सेवा करने का केवल संकल्प ले लो कि मैं कल से भागवत का सेवा करूंगा या एक साल के बाद। कहते हैं कि तक्षणात् सद्य, उसी वक्त यानी कि अद्य यानी कि आज, सद्य यानी कि आज ही भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ये भागवत में मंगलाचरण ये झूठा नहीं हो सकता है, सद्य हृदय अवरुद्धते। तो आप बोलोगे कैसे कैसे, इतने साल से मैं भागवत का सेवा किया, मेरे हृदय में भगवान बैठे नहीं। इसका आप चिंता मत करो, इसका टेंशन भगवान का है, आपके हृदय में भगवान बैठ जाएंगे। भगवान कहते हैं, ये वादा है, गारंटीड है। ये कैसे समझे कि भगवान बैठ गए? अगर कोई बच्चा को बोलेंगे कि स्विच ऑन करने से ये पंखा चालू होता है, तो बच्चा बोलेगा कैसे कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करो, फिफ्थ स्टैंडर्ड पास करो, फिर बाद में टेंथ स्टैंडर्ड में फिजिक्स पढ़ो, फिर पता लगेगा बटन दबाने से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जाएगा, कुछ अणु जाएंगे, परमाणु जाएंगे, और उससे उस पंखे के मैकेनिज्म में झटका लगेगा और पंखा चलने लगेगा। इसी तरह से आज हम बोल सकते हैं अरे भागवत में ऐसे लिख दिया कि संकल्प लेने से भगवान अवरुद्ध होते हैं, ये कैसे? अरे आप अच्छी तरह से जप करो, अच्छे भक्त बनो, धीरे धीरे कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से आ जाओ, फिर पता लगे हाँ व्यासदेव ने जो लिखा वो गलत हो ही नहीं सकता। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ठीक है। हरे कृष्णा। अब से बहुत ही शीघ्र कार्तिक मास आएंगे, अगले मास जो है कार्तिक मास, अक्टूबर 19 तारीख, ठीक है। तो कार्तिक माह का महिमा विशेष रूप में हम ध्यान रखें, इन तारीख 11 तारीख 12 तारीख और 13 तारीख परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो वृंदावन में वास करते हैं, वो 3 दिन का सत्र करेंगे, शाम को 7:30 से 9:30 11 तारीख और 12 तारीख और 13 तारीख दोपहर 1 बजे से 3 बजे कार्तिक महिमा बोलेंगे। जरूर इसे सुनने आइए, क्योंकि कार्तिक का अपार लाभ है, उस लाभ को प्राप्त जरूर कीजिए श्रवण करके। ये तारीख फिर से मैं बोलूँगा, शुक्रवार शनिवार और रविवार, शुक्रवार शनिवार शाम को और रविवार के दिन दोपहर को होगा। इसका लाभ लीजिए और कार्तिक महीने का तैयारी आप कीजिए। श्रील प्रभुपाद की, कार्तिक मास की, गौर हरि प्रेमानंदे।